Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke pehle adhyay mein आठवें मंत्र पर जो भाष्य है वैसे पूरा नहीं हुआ, इसलिए आठवें मंत्र का अभ्यास करो। संयुक्त में तत्चरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बद्धते भोक्तृभावाच् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः संयुक्तमेतच्चरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बद्धते भोक्तृभावाच् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। तथा च सुखशिष्यो गौड़पादाचार्यः आदिगुरु शंकराचार्य जी के ग्रेट ग्रैंड गुरु है ना, ठीक बोला मैंने? आदिगुरु शंकराचार्य जी के ग्रेट ग्रैंड गुरु गौड़पादाचार्य जी और ग्रेट ग्रैंड गुरु सुखदेव जी, शंकराचार्य जी के ग्रैंड गुरु। तो सुख शिष्य सुखदेव जी के शिष्य गौड़पादाचार्य, उन्होंने भी ये बात कही है मांडुक्य कारिका में। यथे कस्मिन् घटाकाशे रजो धूमा दिविर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वद् जीवा सुखादिभिः। यथा एकस्मिन् घटाकाशे, एक घड़े के अंदर एक ही घटाकाश होगा। एक घड़े के अंदर कितने आकाश होते हैं? कहीं का मतलब कुछ बताओ ना, कितने होंगे? जैसे एक ही मठाकाश में अनेक आकाश हो सकते हैं, कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। मठाकाश में अनेक आकाश, जितने बर्तन हैं सभी बर्तन आकाश अनेक हैं कि नहीं, बोलो? मठाकाश के अंदर टॉयलेट आकाश, किचन आकाश है, होंगे कि नहीं? वो सब एक मठाकाश के अंदर ही, फिर भी वो आकाश की भिन्नता है उपाधि भेद से। तो घटाकाश के अंदर जल और जल के अंदर फिर दूसरा आकाश, जलाकाश भी हुई है, घटाकाश भी हुई है। इसी तरह घटावच्छिन्न आकाश घटाकाश, जल प्रतिबिंब आकाश जलाकाश, अंतकरण अवच्छिन्न आत्मा और अंतकरण प्रतिबिंबित आत्मा और अंतकरण अधिष्ठान आत्मा है ना, अंतकरण अधिष्ठान आत्मा पुटस्थ, अंतकरणावच्छिन्न आत्मा चिदा माने जीव, जीव हाँ, चिदाभास और जीव में अंतर करना, जीव शब्द से अंतकरण अवच्छिन्न आत्मा को जीव कहेंगे और अंतकरण प्रतिबिंबित आत्मा को चिदाभास कहेंगे, क्योंकि अवच्छिन्न जो आत्मा है वो आभास नहीं होगा। अवच्छिन्न तो होगा लेकिन आभास नहीं होगा। हाँ, घटोपाधि से अवच्छिन्न, घटाकाश, अंतकरण उपाधि से अवच्छिन्न जीवात्मा, जल प्रतिबिंबित आकाश जलाकाश, अंतकरण प्रतिबिंबित आत्मा है चिदाभास। अरे भाई स्वाध्याय सुनो चाहे प्रवचन सुनो, दोनों ही वेदांत है। यहां तो दोनों ही वेदांत है। हाँ नहीं, आपकी बात सुना दिया है हमने, हमने हमारी बात नहीं सुनाई है। यथा एकस्मिन घटाकाश, यथा दृष्टांत एकस्मिन घटाकाशे, घटाकाश में रजो धूमादिभिर युते है ना, धूल भर गया उस घटाकाश में, धुआं भी भर गया घटाकाश में। अब आप घटाकाश में धूल और धुआं कैसे भरेगा महाराज, ये प्रश्न कर सकते हो। तो घटाकाश छोड़ दो, मठाकाश तो समझ सकते हो ना, है ना? मठाकाश में धूल भर सकता है कि नहीं? एकस्मिन मठाकाश से धूल, क्योंकि खिड़की खुली हो और तूफान आ रहा हो तो मठाकाश के अंदर धूल घुसेगा कि नहीं? और अंदर किचन में कुछ भोजन बना रहे थे तो कुछ जल गया तो धुआं घुस गया कि नहीं? तो इंडिया में तो फिर भी आप अगरबत्ती जितना चाहो जला लो, अमेरिका और यूरोप में तो बड़ी समस्या है भाई। सुबह पूजा करने के लिए किसी ने एक अगरबत्ती ज्यादा जला ली, अलार्म बज गया, टै 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 टै, साइरन बज जाएगा घर के अंदर, तुरंत पुलिस आके घर ले। अब वो साइरन का संबंध फिर पुलिस केंद्र से, घर में वो एक होता है छोटा सा, इतना सेंसिटिव है वो, है लगा देते हैं दरवाजे के पास, वो थोड़ा सा धुआं अगरबत्ती का धुआं उड़ के वहां गया, उसके मुख में गया कि वो आवाज किया। तो कुछ बच्चे लोग क्या करते थे, कुछ करना हो घर में बच्चे क्या, या तो उसको निकाल के रख देते थे, बैटरी निकाल दिया, उसका मुख बंद करना है ना तो बैटरी निकाल दिया, या तो, या फिर उसके मुख में ले जाके कपड़ा डाल दिया, कपड़ा से ढाक दिया तो उसके नाक में धुआं ही नहीं जाए। तो घर में जितना धुआं हो तो कोई फर्क ना पड़े, नहीं तो कोई फ्राई करने लग जाए, पूड़ी पकौड़े पकाने लग गए तो उसी में हल्ला कर दे, जरा सा तेल का धुआं वहां पहुंच गया कि हल्ला कर दे, पका ही नहीं पाए, पकौड़े पका ना पाए। हाँ, बड़ी समस्या है। उसका मुख बंद करो तो फिर खाओ जो कुछ खाना हो, वो ठीक भी है, क्योंकि हमारे तो घर सब आरसीसी होता है, वहां सभी लकड़ी का घर होता है, आरसीसी होता नहीं, इसलिए वो ठीक भी है एक प्रकार, वो सेफ्टी के लिए है, वो पूरे खाली लकड़ी का घर होता है, वहां कहीं आरसीसी घर होता ही नहीं है, तो उसके लिए वो ठीक है। तो मठाकाश के अंदर तो समझ में आ जाएगी ना, धुआं भी घुस सकता है, धूल भी घुस सकता है। यथा एकस्मिन घटाकाश, इससे यह भी सिद्ध होता है कि चिदाभास या जीवात्मा एक प्रकार से अनेक माना गया है, ये उसी के लिए कहा गया है। जीव जीव का जो भेद है उसको स्वीकारा गया है, क्योंकि जीव जीव में तो भेद है ही है, जीव अनेक हैं, ये मानकर ही ये बात चल रही है, ये बात ख्याल रख लेना। क्योंकि एक जीववाद में यह दृष्टांत नहीं जचता, तो अनेक जीववाद में ही यह दृष्टांत है। जैसे घटाकाश अनेक माना गया, इसीलिए घटाकाश अनेक हैं ये तो आप मान ही जाओगे, इसी प्रकार से चिदाभास अनेक हैं या जीव अनेक है। यथा एकस्मिन घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवाः सुखादिभिः। तो एक जीव के सुखी होने पर सभी जीव सुखी होंगे ये जरूरी नहीं, दूसरा जीव को उस जीव के सुखी होने पर दूसरे जीव को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह एक जीव दुखी होने पर दूसरे जीव को उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जीव जीव में उपाधि भेद से जीव भेद माना गया है, और एक जीव के रोने पर दूसरा जीव को रोना पड़े ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक मठाकाश यानी एक घटाकाश में धुआं और धूल घुस जाए तो ये जरूरी नहीं कि दुनिया में जितने मठाकाश हैं सभी में धुआं और धूल घुसना चाहिए, और को कोई संबंध नहीं, और स्वच्छ रह सकते हैं। ये बात इस श्लोक इस कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य ने समझा दिया। यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते, अन्य घट उस धुएं से अन्य घट को कुछ लेना देना नहीं है, उस धुएं से उस धूल से अन्य घट स्वच्छ ही रहेंगे। इसलिए एक जीव के शुभाशुभ कर्म के चलते सभी जीव को शुभाशुभ कर्म से स्पर्श होगा ये गलत है। एक बाद में एक 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 जीव बाद में फिर यह समस्या आ जाएगी। तद्वत् जीवाः सुखादिभिः न संयुज्यन्ते, इसी तरह जीव को परस्पर में एक दूसरे के सुख दुख से एक दूसरे को कोई संबंध नहीं है। जब जीव जीव में ये बात है तो जीव और परमात्मा में तो और बात स्पष्ट है, है ना। जब और जीव और परमात्मा है तो कुटस्थ में तो बात और स्पष्ट है। चिदाभास सुख दुखी होने पर कुटस्थ सुखदेव होना पड़े जरूरी नहीं, हमने एग्जाम्पल दिया, छाया के हिलने से हमारा सिर हिलना पड़े ये जरूरी नहीं है, बत्ती के हिलने के कारण भी छाया हिल सकता है, छाया को हिलने में मेरा सिर हिलना जरूरी नहीं है, ये समझ गए तो समाधान हो गया। तो दो महीने तक फिर वहां कथा करते रहे, रोज हम स्टेज में बैठते रहे और इस सिर का प्रतिबिंब प्रति छाया टेबल के ऊपर पड़ता रहा, रोज ही वह प्रतिबिंब यानी छाया हिलता ही रहा, दो महीने तक कोई समस्या नहीं रही, लेकिन दो मिनट समस्या, बड़े जबरदस्त समस्या आ गई। इति तस्मात् अद्वितीय परमात्मनि, मांडुक्य कारिका के दृष्टांत से क्या सिद्ध हुआ, खुद ही चिदाभासों में भी एक चिदाभास के सुख दुख से दूसरे चिदाभास का कोई संबंध नहीं होता, तब सभी चिदाभासों के सुख दुख से कुटस्थ को क्या संबंध है। नकली को नकली से कुछ लेना देना नहीं है तो नकली को असली से तो और भी कुछ लेना देना नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। यहां एक कहना चाह रहे, एक नक्कली को दूसरे नक्कली से कुछ लेना देना नहीं है, एक चिदाभास से दूसरे चिदाभास का कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उपाधि अलग है इसलिए कोई संबंध नहीं है। एक ही उपाधि में सभी चिदाभास दिखते तब तो शायद, एक ही उपाधि में सभी चिदाभास होते तब तो शायद एक का असर दूसरे को, जैसे फैमिली में होता ही है, एक ही परिवार के अंदर रहने वाले पांच चिदाभास हैं तो एक चिदाभास को जब कुछ हो गया तो उस सभी पांच ही चिदाभास दुखी होंगे कि नहीं, क्योंकि एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। इसी तरह एक ही उपाधि के अंदर रहने वाले को तो शायद इसका असर हो सकता है। और हर जीव अलग अलग उपाधि में रह रहा है तो कोई संबंध नहीं है। इति इत्यादि दृष्टांत हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला? तस्मात् अद्वितीय परमात्मनि, सजातीय भेद रहित परमात्मा में सजातीय भेद से युक्त चिदाभास। चिदाभास कैसे हो गए? सजातीय भेद से युक्त है, अपने जाति दूसरा चिदाभास, अपने जाति का तीसरा चिदाभास, अपने जाति का चौथा चिदाभास, अपने जाति का पांचवा चिदाभास। तो चिदाभास परस्पर में सजातीय भेद से ग्रसित है, मुक्त नहीं है। अनेक चिदाभास मानोगे तो चिदाभास परस्पर में सजातीय भेद से युक्त होंगे। सजातीय भेद से युक्त होने वाले चिदाभासों में भी एक को होने वाले विकार से दूसरे को कोई संबंध नहीं है। तो सजातीय में ये बात है तब कूटस्थ तो सजातीय भेद भी नहीं, विजातीय भेद भी नहीं और सुगत भेद भी नहीं। निरवयव होने के कारण सुगत भेद नहीं, जाति रहित होने के कारण सजातीय भेद नहीं है न, और उससे भिन्न और कोई अस्तित्व में न होने के कारण विजातीय भेद नहीं। उससे भिन्न अन्य वस्तु की पारमार्थिक सत्ता न होने के कारण विजातीय भेद नहीं। समझ गए ना बात? उससे भिन्न पारमार्थिक भिन्नों की पारमार्थिक सत्ता न होने के कारण उसमें विजातीय भेद नहीं। उसके बराबर का दूसरा कुटस्थ न होने के कारण सजातीय भेद नहीं, और वो खुद अनेक वस्तु मिलकर बना हुआ न होने के कारण, निरवय होने के कारण सुगत भेद नहीं। तो तस्मात् अद्वितीय, अद्वितीय शब्द से सजातीय विजातीय सुगत भेदत्रय रहित परमात्मनि, उस परमात्मा में। उपाधि तो उपाधि के द्वारा जीवेश्वरयोर जीव और ईश्वर का भेद सिद्ध हुआ है। जीव और ईश्वर का भेद किससे सिद्ध हुआ? उपाधि से सिद्ध हुआ है। और जिस उपाधि के चलते जीव और ईश्वर का भेद सिद्ध हुआ है, उसी उपाधि से चलते जीव जीव का भी परस्पर में भेद सिद्ध हुआ है। तो जीव जीव का परस्पर भेद सिद्ध होने में कारण क्या है? उपाधि। तो इससे यह भी हो रहा है कि जीव एक ही है, ये इससे यह भी हो रहा है जीव मूल रूप में एक ही है। उपाधि भिन्न होने के कारण जीव जीव में भेद प्रतीत हो रहा है, और यदि उपाधि न हो तो जीव जीव में भेद सिद्ध नहीं होगा। इसी तरह उपाधि के चलते जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध हुआ है। उपाधि न हो तो जीव और ईश्वर में भी भेद सिद्ध नहीं होगा, और भेद के चलते ही ईश्वर और ब्रह्म में भेद हुआ है। उपाधि के चलते ही उपाधि न हो तो ईश्वर और ब्रह्म में भी भेद नहीं होगा। हाँ, ये बात और निश्चय कर लेना, ईश्वर और ब्रह्म में भेद तभी होगा जब जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध होगा। जीव और ईश्वर में भेद हुए बिना ईश्वर और ब्रह्म में भेद नहीं होगा, क्योंकि माया के अविद्या के माया के ईश्वर की जो जिसको उपाधि कहा गया है उसमें दो पक्ष हैं। जैसे इस दीवार के दो पक्ष हैं, एक इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। दीवार एक ही है, एक दीवार का एक पक्ष बाहर है, दूसरा पक्ष अंदर है। इसी तरह एक उपाधि का दो पक्ष है, विशुद्ध सत्व माया और मलिन सत्व अविद्या। आप लोगों ने पंचदशी में इस बात पढ़ चुके हो। हाँ, तो विशुद्ध सत्व अंश में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर, और विशुद्ध सत्व में जब प्रतिबिंबित होगा तो विशुद्ध सत्व मलिन सत्व के बिना भी नहीं रहेगा ना। बात समझ गए ना। स्वच्छ दर्पण, एक तरफ से वह दर्पण स्वच्छ है, दूसरे तरफ से वह दर्पण पूरा का पूरा मरकरी कोटेड है कि नहीं बोलो। यदि दूसरे साइड में मरकरी कोटेड नहीं होगा, कोट नहीं लगाएंगे, पेंट नहीं करेंगे मरकरी का, तो दूसरे साइड दर्पण स्वच्छ आपके मुख को प्रतिबिंबित कर पाएगा? वो तो पार हो जाएगा। तो एक तरफ दर्पण स्वच्छ है तो दूसरी तरफ दर्पण बिल्कुल गंदा है। एक तरफ आपके चेहरे को पूरा दिखाता है जैसा का वैसे, तो दूसरे तरफ कुछ भी नहीं दिखाता है। ये इसी तरह माया का दो भेद होगा, एक तरफ शुद्ध सत्व है जो कि ब्रह्म को ईश्वर के रूप में प्रतिबिंबित करके दिखाता है, दूसरी तरफ मलिन सत्व है जो ब्रह्म को जीव के रूप में प्रतिबिंबित करके दिखा देता है। देखो, जीव ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं है, ये बात ख्याल रख लेना। जीव ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं है, जीव ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। हाँ, एक ही ब्रह्म का दो जगह प्रतिबिंब पड़ा तो दो चीज तैयार हो गए। शुद्ध सत्व में प्रतिबिंब पड़ा उस ब्रह्म का तो ईश्वर हो गया, अब मरण सत्व में प्रतिबिंब पड़ा उसी ब्रह्म का तो जीव हो गया। तो जीव और ईश्वर एक ही बार, ये सब ट्विंस हैं, एक ही मां से एक ही बार पैदा हुए हैं, एक ही बार। ऐसे नहीं पहले जीव बना फिर ईश्वर बना फिर ईश्वर बना फिर जीव बना। हालांकि प्रक्रियाओं में कहीं कहीं पुराणों में ये दिखाया गया है, पहले ईश्वर हुआ फिर ईश्वर ने सब जीवों को बनाया। ईश्वर ने जीवों को नहीं बनाया, जीवों की उपाधियों को बनाया। बात समझ गया कि नहीं। ईश्वर की जीव की सृष्टि ईश्वर की सृष्टि नहीं है, जीव की उपाधियों की सृष्टि ईश्वर की सृष्टि है। जीव और ईश्वर तो एक ही बार पैदा हुए हैं, ये वेदांत की प्रक्रिया। हाँ, ईश्वर के प्रति जरा थोड़ा आस्था भक्ति भाव ज्यादा व्यक्त करने के लिए ईश्वर ने जीव को बनाया, ये कह दिया गया है। तस्माद् अद्वितीय परमात्मनि उपाधि तो जीवेश्वरयोर भेद और जीवानां च परस्परम भेद व्यवस्थायाः। परस्परम मायने जोड़ा है ना, जीवानां च भेद व्यवस्था सिद्ध सिद्धत्वान् न विशुद्ध सत्वोपाधि ईश्वरस्य अविशुद्धोपाधि जीवगता सुख दुख मोहा ज्ञानादय। इससे क्या सिद्ध हुआ? अविशुद्ध, अविशुद्ध माने मलिन सत्व। हाँ, न विशुद्ध सत्वोपाधि ईश्वरस्य अविशुद्धोपाधि जीवगतः सुख दुख मोहा अज्ञानादय। अविशुद्ध जीव में होने वाले सुख दुख अज्ञान इच्छा द्वेष आदि धर्म से विशुद्ध उपाधि वाला ईश्वर को कुछ लेना देना नहीं है।